तारापरी और मान को कुल देवता की पूजा के बाद कपड़े बदलने की रस्म करनी थी, वो भी दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर। तारापरी और अमन रस्म पूरी करने के लिए एक टेंट में चले जाते हैं जो रानी माँ ने कपड़ों का बनवाया था। जल्दी ही रस्म शुरू की जाती है। सबसे पहले मान शुरू करते हैं। मान ने तारापरी की पूरी कमर पर हाथ फेरकर उसके बटन खोले थे। तारापरी के जिस्म को छूकर अमन को ऐसा लग रहा था कि वो किसी सॉफ्ट टेडी पर हाथ रख रहा हो। अपने कांपते हाथों और बढ़ती धड़कनों के साथ अमन ने तारापरी के कपड़े बदलकर साड़ी पहना दी थी और अब तारापरी की बारी थी। तारापरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे। जब कुछ देर तक तारापरी ने अमन को नहीं छुआ तब अमन झुझरा गया और बोला, आप कर क्या रही हैं मिसेज राठौर, जल्दी करें, हमें मोहन की कब्र पर जाने के बाद शहर भी लौटना है, वहां मॉम हमारा इंतजार कर रही होगी। अमन की बात सुनकर तारापरी ने बोला, जी जी मैं करती हूँ। ऐसा कहकर तारापरी ने अमन के कपड़े उल्टे सीधे जो भी उसे समझ में आए वो उतारना शुरू कर दिया था। जैसे ही तारापरी ने अमन को छुआ उसके जिस्म में एक सरसराहट सी दौड़ गई थी। तारापरी को भी करंट सा लगा था, लेकिन उस वक्त वो जल्द से जल्द इस रस्म को पूरा करना चाहती थी क्योंकि उसे मोहन की कब्र पर भी तो जाना था। यही सोचकर तारापरी जल्दी जल्दी अमन के कपड़े उतारने लगी थी। जल्दी के चक्कर में तारापरी के शार्प तेज नाखून अमन की बॉडी पर लग चुके थे जिससे अमन की आह निकल गई थी। और बाहर खड़ी हुई रानी माँ अंदर की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दी थी। तब तारापरी, ये आप कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं? तब अमन, व्हाट यू मीन मैं कैसी आवाज़ निकाल रहा हूँ? एक तो तुमने ये चुड़ैलों वाले नाखून पाल रखे हैं जो मुझे चुभ गए हैं। तब तारापरी, ओह तो आप मुझे चुड़ैल कह रहे हैं जबकि आप तो खुद एक जिन हैं, भूत हैं, घोस्ट हैं। तब अमन ने तारापरी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मॉम बाहर ही खड़ी हुई हैं, उन्होंने सुन लिया तो। तब तारापरी ने अपना हाथ अमन के हाथ पर रखकर जोर से झटका दिया और अमन ने अपना हाथ हटा लिया। तब तारापरी ने अमन से कहा, आपने मुझे भी तो चुड़ैल कहा है, उसका क्या? तब अमन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो बोला था, तुम्हें ये रस्म करनी है या नहीं, देख लो, अगर तुम यहाँ देर करोगी तो मैं तुम्हें मोहन की कब्र पर नहीं ले जाऊंगा। जैसे ही तारापरी ने अमन की धमकी सुनी वो बोली थी, नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, सॉरी, अब परेशान नहीं करूँगी। जैसे ही तारापरी ने ये कहा अमन के मुंह पर एक जीत वाली स्माइल आ गई थी और वो मन ही मन सोचने लगा था कि इस मिसेस जंगली राठौर को कैसे वश में किया जा सकता है, ये पता चल गया था। तब तारापरी ने अमन को शेरवानी का पायजामा खोलने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ दिखाई न देने के कारण गांठ लग गई थी। तब तारापरी को कुछ समझ नहीं आया और वो झुकी और मुँह से वो गांठ खोलने लगी। अमन तारापरी के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था। जैसे ही तारापरी की गर्म सांसें अमन को अपने पेट पर महसूस हुई उसी वक्त उसके पेट में तितली सी उड़ने लगी थी और वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर खुद पर काबू करने की कोशिश करने लगा था। तारापरी को तो आइडिया ही नहीं था कि अमन पर उस समय क्या गुजर रही थी। उसे तो बस अब जल्द से जल्द रस्म पूरी करने की धुन सवार हो गई थी और जल्दी ही तारापरी को कामयाबी मिल गई थी और उसने अमन के कपड़े उतार कर उसे रानी माँ का दिया हुआ धोती कुर्ता पहना दिया था। और फिर जब उन दोनों को लगा कि उन दोनों ने एक दूसरे को कपड़े पहना दिए हैं तब तारापरी ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई थी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर रानी माँ जल्दी से अंदर गईं और उन दोनों को बाहर ले आईं और फिर आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही कुल देवता के मंदिर में ले जाकर उन दोनों का माथा टिकवाया और फिर वापस लाकर एक जगह खड़ा करके बारी बारी से उन दोनों की आंखों की पट्टी खोल दी। जैसे ही उन दोनों की पट्टी खुली और अचानक से रोशनी उन दोनों की आंखों पर पड़ी तब अचानक से उन दोनों की आंखें चौंधिया गई थीं और उन दोनों ने फिर धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोली। और जैसे ही अमन ने तारापरी को और तारापरी ने अमन को देखा तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंस पड़े। रानी माँ और सोनल परी और मीनल परी भी मुस्कुरा उठी थी क्योंकि अमन ने तारापरी को जो साड़ी पहनाई थी वो उल्टी थी और उसका ब्लाउज भी उल्टा पहना दिया था और जो तारापरी ने अमन को कुर्ता पहनाया था वो उल्टा था, जिसे देखकर वो हंस पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन दोनों को एहसास हुआ कि हम दोनों ने ही गलती की है तब अमन और तारापरी ने हंसना बंद किया और तारापरी अमन से, क्या आप ढंग से सीधे कपड़े नहीं पहना सकते थे? तब अमन, ये बात तो मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ। तब अमन रानी माँ के पास गया और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला था, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सही ढंग से इस रस्म को नहीं कर पाया। तब रानी माँ हल्का सा मुस्कुराकर अमन के गाल पर हाथ लगाते हुए बोली थी, बेटा रस्म बहुत अच्छी तरह से पूरी हो चुकी है और आप दोनों के कपड़े उल्टे हैं या सीधे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के जिस्म को अच्छी तरह से ढापा है। आप दोनों ने भले ही उल्टे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आप दोनों का जिस्म ढका हुआ है। इसका मतलब है कि आप दोनों की रस्म बहुत अच्छी तरह से पूरी हो चुकी है। अब आप दोनों यहाँ से लौटकर वापस हमारे महल नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन रस्म के बाद लड़की को अपने ससुराल ही जाना पड़ता है, तब जाकर रस्म पूरी होती है। क्या क्या या 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 अमन काफी हैरान था। तब तारा परी, लेकिन माँ मैं ये कपड़े कहाँ सही करूँ? मैं क्या इन उल्टे कपड़े में ससुराल जाऊंगी? तब रानी माँ, बेटा आप इस टेंट में जाकर अपने कपड़े ठीक कर सकते हो। लेकिन बेटा अब शाम होने में ज्यादा समय नहीं है तो हमें अब घर जाना होगा। कपड़े बदलने से पहले आप हमसे विदा ले लें। ऐसा कहकर रानी माँ तारा परी के गले से लग गई और उसके कान में बोली थी, बेटा आज हमें परीलोक लौटना होगा। अगर हम अभी यहाँ से नहीं गए तो अमन के सामने हमारा सच आ जाएगा। तुम वापस उस गांव की ओर मत जाना क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमारा बनाया हुआ मायावी गाँव गायब होने वाला है। क्या क्या या, 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 या। तारा परी काफी हैरान थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने अपनी माँ से कहा, आप परेशान ना हो माँ, हम चले जाएंगे और मैं उस ओर अमन को नहीं जाने दूंगी, ओके? ऐसा कहकर तारा परी कपड़े ठीक करने चली गई थी और रानी माँ अमन को ढेर सारे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई थी। अमन एक पल के लिए रानी माँ के बारे में सोचने लगा था कि आखिर ऐसी कौन सी रस्म है जिसमें एक बार पूजा होने के बाद वापस से घर नहीं जा सकते हैं। अमन अभी सोच ही रहा था कि तभी तारा परी कपड़े ठीक करके बाहर आ गई थी। जैसे ही अमन ने उसे देखा तो वो देखता ही रह गया था। उस येलो कलर की साड़ी में तारा परी की खूबसूरती बेहद दमक रही थी। अमन उस वक्त सब कुछ भूल चुका था, वो तो बस उस बार कुदरत की खूबसूरती देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सारी प्रकृति की खूबसूरती सिमट कर तारा परी के जिस्म पर आ गई हो।
तारा परी ने चूंकि अब साड़ी सही ढंग से पहन ली थी जिसमें उसकी थोड़ी थोड़ी कमर दिखाई देने लगी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अमन तो बस उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था और उसे पता ही नहीं चला था कि तारा परी कब उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई थी। अमन को अपनी ओर इस तरह से देख थोड़ा सा शर्मा गई थी। तभी उसे अमन की कही हुई चुड़ैल वाली बात याद आ गई और उसने अमन के बेहद करीब जाकर अचानक से उसके कान के पास जोरों से भूं कर दिया था, जिससे अमन एकदम से डर गया और गुस्से से तारा की ओर घूरने लगा। तब तारा परी, अमन सर क्या अब आपको लेट नहीं हो रहा है? हमें देर हो रही है, आप कपड़े ठीक करके आएंगे या ऐसे ही चलोगे? तब अमन तारा परी पर गहरी सी नज़र डालता हुआ वहां से निकल गया और कपड़े बदलने लगा था। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी अपने घर पहुंच चुकी थीं और उन्होंने अमन और तारा परी के लिए गाड़ी भी भिजवा दी थी जिसकी इन्फो उन्होंने अमन को फ़ोन पर दे दी थी। अब अमन के पास केवल उतना ही वक्त था जितने ड्राइवर गाड़ी लेके उसके पास नहीं आ जाता। इतने उसे अपने वादे के मुताबिक तारा परी को मोहन की कब्र पर भी लेकर जाना था। अमन जल्दी से कपड़े बदलकर तारा परी के पास आ गया था। उस गांव के लुक में अमन काफी अलग और एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी का बंदा लग रहा था। तारा परी कितनी देर तक उसे तारीफ भरी नजरों से देखे गई थीं। वेल, अमन ने उसे कहा, तुम्हारी मॉम ने तो वापस उनके घर जाने से मना किया है, अमन ने तारा परी को तंज करते हुए कहा था। तब तारा परी, जी हाँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ का रिवाज है, उसके अनुसार अगर हम वापस वहां गए तो इससे अपशगुन हो सकता है और मेरी माँ ये शगुन अपशगुन बहुत ही ज्यादा मानती है। तब अमन, रिलैक्स, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें कि वहां चलो, ओके? अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम मेरे साथ चलो, वो मोहन की कब्र भी हमें ढूंढनी है। ऐसा तो है नहीं हम वहां जाएंगे और हमें वो कब्र मिल जाएगी। और हाँ, अगर इस बीच ड्राइवर गाड़ी लेके यहाँ आ गया तो फिर मैं आधे रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा, ओके? तब तारा परी ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों आगे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। तारा परी उस गहरे घने जंगल को देखकर कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी लेकिन उसने अमन से कुछ नहीं कहा था कि कहीं अमन उसे लेकर ही ना जाए। वो दोनों जल्दी ही काफी घने जंगल में पहुंच चुके थे लेकिन उन्हें मोहन की कब्र का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। तब अमन तारा परी पर झुंझलाते हुए बोला था, ये कहाँ ले आई हो तुम? अब हम इस घने गहरे जंगल में एक छोटी सी कब्र भला कहाँ ढूंढेंगे? और वैसे भी वो सदियों पुरानी बात थी, तुम्हें क्या लगता है वो कब्र अभी भी होगी? तब तारा परी, आप बोलना बंद करेंगे तभी तुम्हें कुछ सोचूंगी। तभी अचानक